लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। पुनर्मिलन केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, यह एक वरदान है जो क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु से प्रवाहित होता है। यह एक शांति है जो यीशु के हृदय से प्रस्फुटित होती है, एक ऐसी कृपा जिसकी तलाश की जानी चाहिए। सोमवार 25 जुलाई को इस ट्वीट संदेश के साथ संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा के देशज लोगों के साथ अपनी मुलाकात के मर्म को अभिव्यक्ति प्रदान की। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय कनाडा की प्रेरित यात्रा पर हैं। सोमवार 25 जुलाई को उन्होंने कनाडा के देशज लोगों से मुलाकात कर कनाडा के देशज आवासीय विद्यालयों की विनाशकारी नीति के साथ कैथोलिक कलीसिया के सहयोग के लिए क्षमा याचना की थी। रविवार 24 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस कनाडा में अपनी 6 दिवसीय प्रेरित यात्रा के लिए रोम से रवाना हुए थे। सोमवार को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के मास्क वाचिस में भूतपूर्व एरमिनेस्किन मूल निवासी आवासीय छात्रावास में देशज लोगों से मुलाकात कर संत पापा ने इस बात पर गहन खेद व्यक्त किया कि ख्रिस्तीय समाज में मूल निवासियों को बलात् आत्मसात करने की नीति ने उनकी संस्कृतियों को नष्ट कर डाला था तथा उनके परिवारों और पीढ़ियों को हाशिए पर रख दिया था, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। इस अवसर पर क्षमा याचना करते हुए संत पापा ने कहा, मैं देशज लोगों के खिलाफ इतने सारे ईसाइयों द्वारा की गई बुराई के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ।
Es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación que también incluían el sistema de las escuelas residenciales fueron nefastas para la gente de estas tierras।
कनाडा में तत्कालीन छात्रावासों में ख्रिस्तीय मिशनरियों द्वारा प्रयुक्त निंदनीय नीतियों का संत पापा ने खंडन किया, जिसे कनाडा के सत्य और पुनर्मिलन आयोग ने एक सांस्कृतिक नरसंहार निरूपित किया है। संत पापा फ्रांसिस की 6 दिवसीय कनाडा प्रेरित यात्रा को प्रायश्चित तीर्थ यात्रा का नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य देशज लोगों के साथ पुनर्मिलन के मार्ग पर कलीसिया की मदद करना तथा पीड़ितों की चंगाई में सहायता प्रदान करना है। गौरतलब है कि 19वीं शताब्दी से 1970 के दशक तक कनाडा में 1.5 लाख से अधिक देशज बच्चों को सरकार द्वारा वित्त पोषित ईसाई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता रहा था, ताकि उन्हें उनके घरों और संस्कृति के प्रभाव से अलग किया जा सके। इसका उद्देश्य उन्हें ख्रिस्तीय समाज का अंग बनाकर मुख्य धारा के समाज में आत्मसात करना था, जिसे अतीत की कनाडाई सरकारें श्रेष्ठ मानती थीं। विगत वर्ष कनाडा और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व स्कूलों में सैकड़ों संभावित दफन स्थलों की खोजों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस खौफनाक सत्य के खुलासे ने संत पापा फ्रांसिस को सत्य आयोग के आह्वान का प्रत्युत्तर देते हुए कनाडा की धरती पर क्षमा याचना के लिए प्रेरित किया। देश के 139 आवासीय विद्यालयों में 66 का संचालन तत्कालीन कैथोलिक धर्म समाजों और धर्म संघों द्वारा किया जाता रहा था। सोमवार के दिन की परस्पर विरोधी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए उपस्थित जन समुदाय में से कुछ लोग संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को सुनकर रो पड़े। एक ओर मौन छाया हुआ था तो दूसरी ओर संत पापा के साहसिक कृत्य पर लोगों ने तालियां भी बजाई। देशज महिला एवलिन कोर्कमाज ने कहा, मैंने इस माफी के लिए 50 साल इंतजार किया है और आखिरकार आज मैंने इसे सुना। उन्होंने कहा, एक ओर मैं खुश हूं किंतु कुछ हिस्सा मेरा उदास है और कुछ हिस्सा सुन्न पड़ गया है। हालांकि उन्होंने आशा व्यक्त की कि संत पापा फ्रांसिस पुनर्मिलन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना की घोषणा करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि तत्कालीन स्कूलों में मरने वाले बच्चों पर कलीसियाई फाइलें जारी की जा सकेंगी। संत पापा के साथ साक्षात्कार हेतु एकत्र जन समुदाय में से कई ने पारंपरिक पोशाकें पहनी थी, जिसमें रंगीन रिबन स्कर्ट और देशी रूपांकनों के साथ बनियाने शामिल थी। अन्य लोगों ने नारंगी रंग की शर्ट पहनी थी जो स्कूल के बचे लोगों का प्रतीक बन गई है। यह उस महिला की स्मृति में पहनी जाती है जिससे उसकी दादी द्वारा भेंट में मिली प्यारी नारंगी शर्ट स्कूल में जब्त कर ली गई थी और एक वर्दी में बदल दी गई थी। संत पापा फ्रांसिस के साथ मुलाकात की गंभीरता के बावजूद माहौल कई बार हर्षपूर्ण हो उठा था। देशज जनजातियों के प्रमुखों ने एक सम्मोहक ढोल की लय से, कई लोगों ने पारंपरिक नृत्य से, जय जयकारों से, विजय गीत से और करतल ध्वनि से समारोह स्थल को गुंजायमान बनाए रखा। समारोह के प्रतिभागियों ने 4,000 से अधिक बच्चों के नाम वाले मैदान में एक लंबे लाल बैनर पर परेड किया और उन बच्चों की याद की जो आवासीय विद्यालयों में मर गए थे या फिर कभी घर नहीं लौट पाए थे।
संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा के प्रथम दिन मस्कवासिस के आदिवासियों से मुलाकात की और आवासीय विद्यालयों में हुई घटनाओं के लिए दुख व्यक्त करते हुए पश्चातापी हृदय से क्षमा की याचना की। संत पापा ने कहा,
Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón.
मैं आपके देश में व्यक्तिगत रूप से अपने दुख को व्यक्त करने, ईश्वर से क्षमा मांगने, चंगाई और मेल मिलाप करने, आप सबों के संग सामीप्य व्यक्त करते हुए आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने पूर्व रोम में हमारी मुलाकात की याद करता हूँ। उस समय मुझे हिरण खाल के 2 जोड़े जूते दिए गए थे जो आदिवासी बच्चों के दुखों को व्यक्त करता है, विशेषकर उन दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की जो आवासीय स्कूलों से कभी लौट कर नहीं आई। मैं इस निशानी पर चिंतन करता हूँ जो विगत महीनों में मेरे लिए दुख, आक्रोश और शर्म के कारण रहे हैं। सचमुच में उन बच्चों की याद अपने में दुखदायी है। वे जूते हमें एक राह के बारे में भी कहते हैं जिसमें हम एक साथ आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। वे हमें एक साथ आगे बढ़ने, प्रार्थना और मिलकर कार्य करने हेतु आमंत्रित करते हैं, जिससे अतीत की दुखदायी यादें हमें भविष्य में न्याय, चंगाई और मेल मिलाप की ओर अग्रसर कर सके।
Pienso en el drama sufrido por tantos de ustedes, por sus familias, por sus comunidades, en lo que ustedes compartieron conmigo sobre los sufrimientos padecidos en las escuelas residenciales.
मैं आवासीय विद्यालयों में हुए उन हृदय विदारक घटनाओं के बारे में विचार करता हूँ जिससे आपको और आपके परिवारों और समुदायों को झेलना पड़ा। ये वे दिल हिला देने वाली घटनाएं हैं जिन्हें याद करते हुए जिक्र करने से हमें ऐसा लगता है मानो वे पुनः घटित हो रही हैं। मैं इस बात का अनुभव करता हूँ। आज का हमारा यह मिलन उन पुरानी यादों को लेकर आती और हमें दुख पहुँचाती है। संत पापा ने कटु अनुभवों को अपने साथ साझा करने के लिए कनाडा के आदिवासियों की प्रशंसा की। आज मैं इस धरती पर जो खुले घावों को अपने में वहन करती है, यहाँ की पुरानी यादों के साथ हूँ। उन्होंने अपनी प्रेरितिक यात्रा के सार को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पश्चाताप की यात्रा करते हुए और एक बार क्षमा की याचना करता हूँ।
Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
मैं दुखी हूँ। मैं क्षमा की याचना करता हूँ, विशेष रूप से कलिसे के सदस्यों और धार्मिक समुदायों की उदासीनता के लिए जिसके कारण आवासीय विद्यालयों को अत्यधिक बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि इस धरती पर ख्रिस्तियता और सामाजिक जीवन का विकास हो जहाँ आदिवासियों के अनुभवों का सम्मान किया जाए और उन्हें सम्मान मिले। संत पापा ने अपने संबोधन के अंत में विभिन्न स्थानों के मूल निवासियों और आदिवासियों को इस बात का विश्वास दिलाया कि वे उनके दुखों और कठिनाइयों, चुनौतियों और आपदाओं से वाकिफ हैं तथा उन्हें अपने विचारों और प्रार्थनाओं में सदा रखते हैं। पश्चाताप के इस तीर्थ में कही गई मेरी बातें सभी देश के आदिवासियों को अपने में समाहित करती हैं, जिन्हें मैं प्रेम से आलिंगन करता हूँ। बुराई की उपस्थिति में हम अच्छाई के ईश्वर से निवेदन करें, मृत्यु के सामने हम जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करें। मेल मिलाप के हमारे प्रयास अपने में काफी नहीं हैं, हमें पवित्र आत्मा की शांतिमय शक्तिशाली प्रज्ञा, उनके कोमल प्रेम की जरूरत है। वे हमें हृदय की गहराई में इन बातों की अनुभूति लाएं, वे हमारे मार्ग को प्रशस्त करें और एक साथ हमारी यात्रा में हमें आगे ले चलें।
कनाडा के अल्बर्टा प्रांत स्थित मास्क वाचिस में 25 जुलाई को कनाडा के देशज लोगों के साथ संत पापा फ्रांसिस की मुलाकात और उनके द्वारा देशज लोगों के छात्रावासों में कैथलिक मिशनरियों की करतूतों के लिए मांगी गई क्षमा पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक वक्तव्य जारी कर संत पापा फ्रांसिस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कहा गया, आज परम पावन संत पापा फ्रांसिस मास्क वाचिस में थे, जो संधि क्षेत्र 6 प्रथम राष्ट्रों की पारंपरिक भूमि और 33 लोगों पर स्थित है, जहां उन्होंने आवासीय विद्यालयों में अनुभव की गई प्रताड़ना को पहचाना, जिसके परिणाम स्वरूप देशज लोगों को सांस्कृतिक विनाश और जीवन की हानि का सामना करना पड़ा था। इस देश के हर क्षेत्र में देशज लोगों के खिलाफ ईसाइयों द्वारा की गई बुराई के लिए संत पापा ने क्षमा मांगी, जिसके लिए हम आभारी हैं, क्योंकि यह पुनर्मिलन की दिशा में एक ठोस कदम है। वक्तव्य में बताया गया, आवासीय स्कूल प्रणाली ने देशज बच्चों को आत्मसात करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, आध्यात्मिकता, परंपराओं और पहचान को त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आवासीय विद्यालयों में भाग लेने के लिए 1.5 लाख से अधिक बच्चों को उनके परिवारों और समुदायों से ले जाया गया। कई लोगों को शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण का सामना करना पड़ा और हजारों बच्चे कभी घर नहीं लौटे। आवासीय विद्यालय प्रणाली की दर्दनाक विरासत आज भी मौजूद है। वक्तव्य में आगे कहा गया कि 2015 में कनाडा के सत्य और पुनर्मिलन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सरकार, कलीसिया तथा मुख्य धारा समाज के नेताओं को इस क्रूर नीति के लिए दोषी ठहराया गया था। इसलिए अब जरूरी है कि कनाडा की सरकार, कनाडा की कलीसिया और कनाडा का हर नागरिक पुनर्मिलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। कहा गया कि सुलह और उपचार की भावना में हम एक साथ मिलकर देशज लोगों के लिए और कनाडा के हर नागरिक के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को एडमंटन के पौत्र हृदय गिरजाघर में मूलवासी कैथलिकों से मुलाकात की और कहा कि मेल मिलाप ख्रिस्त का वरदान है, जिसके द्वारा हम कनाडा के आवासीय स्कूल प्रणाली में कलीसिया की भूमिका द्वारा उत्पन्न दर्द के बीच आगे बढ़ सकते हैं। संत पापा ने कहा, यही आगे बढ़ने का रास्ता है कि हम एक साथ ख्रिस्त को देखें, जो हमारे प्रेम के खातिर विश्वासघात किए गए एवं क्रूसित हुए। उस ख्रिस्त की खोज करें, जो आवासीय स्कूल के अनेक विद्यार्थियों में क्रूसित हुए। अपने संबोधन में संत पापा ने खुशी व्यक्त की कि उन्हें एक मित्र एवं तीर्थयात्री के रूप में उनकी भूमि में आने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कनाडा में उनकी प्रेरित यात्रा चंगाई की प्रक्रिया को सहयोग देने की इच्छा का ठोस चिन्ह है। संत पापा ने कहा कि पल्ली एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि कलीसिया सभी का घर है। एक ऐसा घर जहां हर कोई स्वागत किया गया महसूस कर सके। पिछले अनुभव एवं व्यक्तिगत जीवन की कहानियों की परवाह किए बिना संत पापा ने कनाडा में अपने प्रायश्चित तीर्थ यात्रा के कारणों की याद करते हुए कहा,
haciendo memoria del mal que sufrieron los pueblos indígenas por parte de muchos cristianos,
यह याद करना मुझे दुख देता है कि कैथोलिकों ने आत्मसात करने और मताधिकार से वंचित करने की नीतियों में योगदान दिया, जिससे हीनता की भावना पैदा हुई, समुदायों और उनकी संस्कृति तथा आध्यात्मिक पहचान को लूटा, उनकी जड़ों को तोड़ा और पूर्वग्रही एवं भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, और यह भी कि उन्होंने शैक्षणिक प्रणाली के नाम पर ऐसा किया जबकि उसे ख्रिस्ते होना चाहिए था। पोप ने कहा कि शिक्षा को सम्मान पर आधारित होना और पूर्व पैक प्ररूप में कभी नहीं थोपा जाना चाहिए, बल्कि जीवन के रहस्य को एक साथ खोजने के लिए एक साहसी कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए। अपने संबोधन में संत पापा ने मेल मिलाप की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला तथा कहा कि यीशु ने क्रूस पर जीवन के वृक्ष पर अपने साथ मेल मिलाप किया है, जैसा कि प्राचीन ख्रिस्ते कहना पसंद करते थे। जीवन का वह वृक्ष स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है तथा सारे सृष्टि का आलिंगन करता, यद्यपि चीजें अकल्पनीय और असम प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि यीशु ने अपने क्रूस के चारों छोरों के माध्यम से चारों मुख्य बिंदुओं का आलिंगन किया है तथा सबसे दूर के लोगों को भी एक साथ लाया है। उन्होंने सभी चीजों के लिए शांति और चंगाई लाई है। कनाडा के आवासीय स्कूल के हाथों कई मूलवासी लोगों एवं परिवारों को दुख पहुंचाए जाने को स्वीकार करते हुए संत पापा ने कहा कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए कितना प्रयास किया जाना चाहिए था जिन्होंने उन पुरुषों और महिलाओं के कारण बहुत अधिक दुख सहा। प्रतिष्ठा के हनन, बुरे अनुभव और भरोसे पर विश्वासघात को कोई भी कभी दूर नहीं कर सकता अथवा विश्वासों के रूप में अपने खुद के शर्म को दूर कर सकता है, फिर भी हमें नवीकृत होकर आगे बढ़ना है। संत पापा ने कहा, आगे का रास्ता है ख्रिस्त को एक साथ देखना तथा ख्रिस्त के वरदान मेल मिलाप को स्वीकार करना, उस शांति की खोज करना जो यीशु के दिल से निकलती है, और एक कृपा जिसे मांगा जाना चाहिए। यदि हम एक दूसरे से और अपने आप से मेल मिलाप करना चाहते हैं, तब हमें अतीत से मेल मिलाप करना होगा।
En este templo sobre el altar y el sagrario vemos las cuatro estacas de una típica tienda indígena.
संत पापा ने गौर किया कि वेदी और पौत्र संदूक के ऊपर चार खंभे हैं, जो एक खास मूलवासी तंबू को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा,
Era la tienda del encuentro.
यह ईश्वर के साथ मुलाकात की याद दिलाता है, जो मरुस्थल में इसराइली लोगों के साथ 40 साल यात्रा में उनके साथ रहे।
Nos recuerda que Dios camina con nosotros y le gusta encontrarnos juntos.
उन्होंने कहा कि तंबू हमें स्मरण दिलाता है कि ईश्वर यात्रा में हमारा साथ देते हैं और एक साथ हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। ईश्वर सामीप्य के ईश्वर हैं और यीशु हमें करुणा एवं कोमल प्रेम की भाषा सिखलाते हैं। अंततः संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर हमें अपने हाथों में लेकर इतिहास के मरुस्थल से पार होते हुए हमारे कदमों को मेल मिलाप के रास्ते पर आगे ले चलें।
Y también en los desiertos de la historia guía nuestros pasos por el camino de la reconciliación.
और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।